नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद जागृति।
कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला आयरलैंड से जारी। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में। इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु की पहले दौर में हार। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के आठवें राउंड में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा मैग्नस कार्लसन से हार के बाद तीसरे स्थान पर। और शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कप से। और वर्ल्ड कप में चूंकि भारत अपने अभियान की शुरुआत आज से ही कर रहा है, आज 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला इस समय चल रहा है आयरलैंड से। और भारत ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का ऑप्शन चुना है। और अपने श्रोताओं को ताजा अपडेट बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 5 ओवर का गेम खेल लिया है। 6वें ओवर में आयरलैंड ने अब तक 2 विकेट खो दिए हैं और 26 रन बना लिए हैं। आयरलैंड और भारत का जो मुकाबला है, आप इसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी ये मौजूदा टूर्नामेंट में हालांकि पहला मुकाबला है, लेकिन दोनों टीमों के बीच में कुल 9 मुकाबले हो चुके हैं। एक तरफ भारत जो अपने आप में चैंपियन है और दूसरी तरफ आयरलैंड जो अभी शुरुआती ही दौर में है।
देखिए, आयरलैंड छोटी टीम जरूर है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके बहुत से खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में लगातार बहुत कंसिस्टेंटली खेलते हैं। आयरलैंड के लिए बहुत कम साथ में आते हैं, क्योंकि आयरलैंड की टीम उतना इंटरनेशनली खेलती नहीं है, तो एक्सपीरियंस की उस तरह से कम ये नहीं कह सकते कि कमी है टीम में। लेकिन हाँ, भारत के मुकाबले अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल थोड़ी सी आपको कमजोर टीम जरूर लगती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल से सीधा यहां आए हैं, और आईपीएल भारत में खेला गया था, वो फॉर्मेट डिफरेंट है, टीमें बिल्कुल अलग हैं, कंडीशंस अलग होती हैं, पिच अलग है, सब कुछ अलग है। और आयरलैंड ऐसा नहीं है कि बहुत बिना किसी एक्सपीरियंस के या बिना किसी प्रैक्टिस के उतर रही है। इससे पहले वो पाकिस्तान के साथ सीरीज में पाकिस्तान को हरा के आई है, टी20 सीरीज ही खेली थी उन्होंने। तो हालांकि अभी ऑलरेडी 2 विकेट उनके गिर चुके हैं, जो दोनों अर्शदीप ने एक ही ओवर में निकाले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत उनको हल्के लेने की कोई गलती करेगा। मुझे पता है सारा देश जो है वो 9 तारीख के मैच के बारे में सोच रहा है, लेकिन हमें ये
होना है
बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक के लिए शायद भारत का टूर्नामेंट 9 तारीख को शुरू हो भारत पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारतीय टीम कम से कम ये नहीं सोचेगी, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में उतरते हैं तो आप एक मैच के बारे में सोच के नहीं उतर सकते हैं। आपको हर मैच जीतना है, तभी आप फाइनल खेलेंगे और फाइनल जीत पाएंगे।
आपके लिए हर मुकाबला इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरी बात यह होती है कि वो आपको आगे आने वाले मैच के लिए प्रैक्टिसेस देता है, और दूसरा लर्निंग्स भी देता है। जैसा आपने अभी कहा कि 9 तारीख पर जो है सबकी नजरें हैं, क्योंकि चिर प्रतिद्वंद्वी दोनों जो है वहां पर मुकाबला करने वाले हैं। हालांकि इस पिच पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ी मुश्किलें हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो इसे देखते हुए अभी स्कोर क्या लगता है?
देखिए, स्कोर अब टी20 में कोई भी स्कोर गेस करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि हमने जिस तरह से आईपीएल में देखा कि 300 के आसपास तक टीमें स्कोर कर रही थी, 270-280 बना के गई हैं।
वहां पर पिच अलग थी और यहां पर पिच एकदम से अलग है। आप अभी
बिल्कुल, जैसे इससे पहले भी जो मैच हुआ था, श्रीलंका वाला मैच जो हुआ था, उसमें हमने देखा था कि 100 भी नहीं पहुंच पाई थी श्रीलंका की टीम जब साउथ अफ्रीका के साथ खेल थी। और यहीं पे इसी मैदान पे भारत ने बांग्लादेश को प्रैक्टिस मैच में 60 रन से भी हराया था।
जी,
तो जगह बिल्कुल नहीं है। यूएस में आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आज से 5 महीने 6 महीने पहले तक यहां पे स्टेडियम नहीं था, ग्राउंड नहीं था। ये पिछले 6-8 महीने में इन्होंने पूरा तैयार किया है, ड्रॉप डाउन पिच है, तो कुछ भी आप जब जिस चीज का आपको पता नहीं है वहां पे जब तक आप एक दो मैच खेलेंगे नहीं तब तक मुझे लगता है खिलाड़ी भी कुछ बोलने से पहले बोलने नहीं चाहेंगे कि पिच कैसी है या कंडीशंस कैसी है। हालांकि हमने ये जरूर देखा पिछले एक दो मैच में कि ग्राउंड काफी बड़ा है, तो जिन खिलाड़ियों को आदत है कि खास करके भारत में और आईपीएल में खेल के कि जहां पे कई बार ग्राउंड एक किसी एक तरफ की बाउंड्री जो है वो 55-56 मीटर पे भी रहती है जो बिल्कुल बेयर मिनिमम है, वो उसमें जब आप 6 या 4 की आपको आदत पड़ जाती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है खिलाड़ियों को संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपके पास 50-55-60 मीटर के बाउंड्रीज नहीं है जो मिनिमम है, जो एटलीस्ट श्रीलंका मैच में जो देखा था उसमें जो सबसे छोटी बाउंड्री है वो शायद 64 मीटर के आसपास थी। तो अगर ये सोचें कि आप अगर थोड़ा सा भी मारेंगे और तो आपका बॉल 4 या 6 के लिए ही जाएगा, वो इतना आसान नहीं होगा।
यहाँ पर शॉट्स खेलना भी आसान नहीं है,
शॉट्स खेलना पिच के हिसाब से आसान नहीं है और ग्राउंड बड़ी है तो आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स अपनी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं मान के बैठ सकते कि आपने इनफील्ड क्रॉस कर दिया तो बॉल 4 या 6 के लिए जाएगी ही जाएगी और आपको कोई रोक बॉल को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप उसके पीछे जाएंगे और फील्डिंग अच्छी होगी तो बाउंड्रीज इतनी आसानी से नहीं आएंगी।
बिल्कुल, और इस समय हमारे वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ हैं कुलविंदर सिंह कंग जो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस समय वहां का माहौल क्या है। क्रिकेट प्रेमी वहां पर भी जुटे हुए हैं क्योंकि वर्ल्ड कप है।
भारत और आयरलैंड के बीच विश्व कप का ये लीग का 8वां मुकाबला है, भारत के अभियान की शुरुआत हो रही है। ये पहला मुकाबला है नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंटी ग्राउंड न्यूयॉर्क में और भारत ने कहा जीत कर पहले दो विभाजी का फायदा लिया है, फैसला किया उसका फायदा भारत को मिला क्योंकि भारत ने 2 शुरुआती झटके दिए हैं आयरलैंड को। भारत की तरफ से अर्शदीप और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट हासिल किया, 7 पर पहला विकेट गिरा और 9 पर दूसरा। अब क्रिकेट चल रहा है 26 रन है, बहुत बहुत जबरदस्त है। यहां पर अगर देखा जाए तो पूरा स्टेडियम नीली जर्सियों से भारत की जर्सी भारत माता की जय और चक्र इंडिया के नारों के साथ गूंज रहा है हवा में।
धन्यवाद कुलविंदर जी इस जानकारी के लिए, और आप भी यहां बैठे बैठे वहां के जोश से भर गए होंगे। और अगला मुकाबला जो अभी उत्तरा बात कर रही थी कि बड़ा हाई वोल्टेज होने वाला है, उसके लिए भी लोग अभी से तैयारी कर ही रहे हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं क्रिकेट से टेनिस की ओर। टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बेल्जियम के सैंडर जिडे और जोरान वी को 7-6, 5-7, 6-1 से हराया। इस शानदार खिलाड़ी और इनके पेयर, क्योंकि अभी इससे पहले इन्होंने अपने ही हमवतन एन बालाजी को जब हराया उसके बाद उम्मीदें काफी लग रही थी कि हाँ अभी ये क्वार्टर में पहुंचे हैं, और जिस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है उसके बाद क्या लगता है अभी आगे?
देखिए, रोहन बोपन्ना जिस अपने करियर के जिस पड़ाव पर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत है। एक ट्रॉफी वो भी ग्रैंड स्लैम में या फ्रेंच ओपन में आप जीतेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई भी खिलाड़ी चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जीते। पर इस उम्र में पहुंच के और करियर के इस पड़ाव में वो जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ट्रॉफी से ज्यादा लोगों जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको इसी बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि 43-44 में अगर आप इतने कॉम्पिटिटिव हैं तो जो 25-28-30 साल के हमारे खिलाड़ी हैं वो इनसे क्या सीख सकते हैं, ना सिर्फ गेम के हिसाब से बल्कि इंजरी फ्री होने के हिसाब से। क्योंकि भारतीय टेनिस में सबसे बड़ी दिक्कत जो रही है लगातार सिंगल्स में भी डबल्स में भी, वो इंजरीज को लेकर रही है। अगर इंजरीज नहीं होती तो शायद युकी भांबरी सिंगल्स में टॉप के खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन उनके करियर का बहुत लंबा समय जो है एक वो इंजरीज की वजह से गया। पर जब आप रोहन बोपन्ना को खेलते देखते हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, ऊपर से जिस तरह से उन्होंने सेकेंड इनिंग्स अगर हम कहें रोहन बोपन्ना की, एक तरह से जब उन्होंने खुद कहा कि एक पॉइंट पे वो डिसाइड कर चुके थे रिटायर होना, लेकिन फिर उन्होंने कम बैक किया, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग किया, फिजिकली अपने फिटनेस पे काम किया, तो अब वो जिस स्टेज पे हैं मुझे लगता है कि फाइनल ट्रॉफी जीतना 50-50 होगा, पर उनको बिल्कुल भी काउंट आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपना गेम एंजॉय कर रहे हैं और उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी बन गई है, एक स्टेबल पार्टनरशिप है। और डबल्स में पार्टनरशिप, अपने पार्टनर को समझना बहुत जरूरी होता है और उनकी जो जोड़ी है वो इस वक्त बहुत, पिछले कुछ समय से क्योंकि वो साथ में खेल रहे हैं लगातार, काफी टूर्नामेंट्स खेले हैं, काफी टूर्नामेंट्स जीते हैं, तो वो जो तालमेल बना हुआ है मुझे लगता है कि फाइनल तक तो कम से कम होना ही चाहिए उनको।
बिल्कुल। और अभी पेरिस ओलंपिक्स भी आ रहे हैं, इसको देखते हुए क्योंकि अभी तक रोहन बोपन्ना ने डिसाइड नहीं किया है अपना पार्टनर, तो अभी जैसे ये जो टेनिस का टूर्नामेंट चल रहा है उसके बाद में, क्योंकि एक तरफ उनके हमवतन भी हैं और बाकी जैसे आपने कहा कि बड़ी शानदार ये जोड़ी चल रही है दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, तो अभी क्या लगता है कि वो किसे लगभग, मतलब किस हिसाब से चूज करेंगे कि मेडल, जो मेडल पर नजर है भारत की?
देखिए वो तो रोहन को खुद डिसाइड करना होगा क्योंकि ऑनेस्टली अगर देखें तो रोहन बोपन्ना के बाद जितने हमारे खिलाड़ी हैं वो लगभग आसपास के ही हैं सारे। सिंगल्स में भले ही सुमित नागल बाकियों से बेहतर है लेकिन जो बाकी के खिलाड़ी हैं चाहे वो रामकुमार हों या युकी भी हों तो वो ऑलमोस्ट सारे आसपास के ही हैं, तो इसलिए ये कहना कि वो किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे ये अभी से बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए अभी कि अभी हमारे पास अभी 1.5 से 2 महीने बचे हैं फाइनल करने के लिए अपनी पेयर्स और उसकी एंट्रीज जो जाएंगी, तो बाकी अगले 2 महीने में किस तरह से चीजें जाती हैं, रैंकिंग्स किस तरह से ऊपर नीचे होती हैं क्योंकि सभी खिलाड़ी बाकी टूर्नामेंट्स में भी खेलेंगे, तो रैंकिंग्स किस तरह से ऊपर नीचे होती हैं उसके हिसाब से ही मुझे लगता है फैसला लिया जाएगा।
और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। तनिष्का क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने आज इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। लगातार जो हम बात कर रहे हैं पीवी सिंधु के बारे में, अब तो अभी फिर मैं वही बात करूंगी कि ओलंपिक्स बिल्कुल नजदीक है, 1.5 महीने का समय है, तो ऐसे में इनकी जो परफॉर्मेंस है वापस इनका उस दौर में नहीं आ पाना कितना, मतलब चिंताजनक है भारत के लिए?
बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पर्सनली वो जरूर चाहेंगी कि फर्स्ट राउंड में बाहर होके जरूर वो काफी निराश होंगी क्योंकि आप जब ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट के लिए जाने की बात करते हो तो एक मोमेंटम बनाना बहुत जरूरी होता है। हालांकि पहले के टूर्नामेंट्स का वहां पे प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि वो अलग दिन होगा बिल्कुल, लेकिन एक मोमेंटम होता है, विनिंग और लूजिंग दोनों का एक मोमेंटम बनता है और वो आपके सिर्फ गेम पे नहीं आपके माइंड पे भी थोड़ा सा असर रखता है। तो टाइटल चाहे वो जीते या ना जीते लेकिन पहले राउंड में बाहर होना थोड़ा सा जरूर उनको परेशान करेगा, पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है क्योंकि पिछले 6 महीने में सिंधु ने अच्छे परफॉर्मेंसेस भी काफी दिए हैं टूर्नामेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में, तो इस वक्त अगर हो सकता है वो कुछ नया ट्राई भी कर रही हो सकता है वो पूरा अपना 100% नहीं लगाना चाह रही हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है उनके साथ, बस वो जो मोमेंटम वाली मैं बात कर रही हूँ वो अगर बना रहे तो ज्यादा अच्छा है, पर जब ओलंपिक्स होते हैं तो उसके पहले के सारे टूर्नामेंट आपके लिए एक प्रैक्टिस की ही तरह रह जाते हैं।
बिल्कुल। और तनिष्का क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने जैकी डेंट और सिलाई को सीधे सेट में 21-15 से हराया था। वहीं लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत ने कल अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पिछले सप्ताह सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली त्रिशा जौहरी और गायत्री गोपीचंद ने भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे की जोड़ी को हरा दिया। बी सुमित रेड्डी और सिक्की रेड्डी ने भी अमरीकी जोड़ी विंसन च्यू और जेनी गई को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। और इस बीच किरण जॉर्ज को पुरुष सिंगल्स में चीन के होंग यांग वेंग से हार का सामना करना पड़ा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के आर्मागेडन गेम के 8वें राउंड में भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा कल वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन से हार गए और इस राउंड में जीत के साथ मैग्नस कार्लसन 14.5 अंक हासिल करके शीर्ष पर हैं। हिकारू नाकामुरा 13.5 अंकों के साथ दूसरे और प्रज्ञानंदा 11 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं महिला वर्ग में विश्व चैंपियन जू वेंजुन ने पिया कैम्पलिन के खिलाफ क्लासिकल गेम जीतकर स्टैंडिंग में बढ़त हासिल कर ली है। और चलते चलते आपको बता दें कि FIH प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम 8 जून को जर्मनी से मुकाबला खेलेगी। वहीं भारत का आखिरी मैच 9 जून को ग्रेट ब्रिटेन से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तरा, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को। नमस्कार।